जिनको देर हो रही है वो जा सकते हैं। अब जम के बैठे
बाबा अपने वस्त्र आदि नंगे पुंगे घूमेंगे, तो अगर बच्चे को अगर माँ बाप के साथ ही करने का कुछ हो गया क्या, तो फिर क्या हो जाएगा?
माँ बाप के साथ क्या हो गया?
जब सब इंद्रिया वगैरह दिखेंगी, तो फिर अगर माँ बाप के साथ ही करने का कुछ विचार ऐसा आ गया, तो फिर क्या होगा?
माँ बाप के साथ क्या करने का विचार आ गया? क्या बोल रहा है, क्लियर करो, क्या करने का विचार आ गया है? क्या जानते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चला कि बच्चा माँ बाप के साथ क्या करने का विचार आ जाएगा है। भट्टी हो चुकी है तुम्हारी? कब?
दो साल
पहले हो गई। बेसिक में चलते थे क्या? वो चलते थे तो बताओ, क्लियर करो, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा।
इंद्रिया दिख गई तो उसको चाट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
चाट लिया, ये क्या बोल रहा है?
अभी ये सब तो होएगा ही फिर, मतलब या फिर अभी तक वस्त्र पहने थे तो ये सब नहीं हुआ,
ये
और अगर वस्त्र निकाल दिए तो फिर ये सब तो होएगा ही।
ये जाति जाति के बच्चों की पैदाइश होती है, कोई बच्चे किस जाति के होते हैं, कोई किस जाति के होते हैं, जिस जाति में जो पैदा होते हैं उनको वो अनुभव होता है। तो हमें बताओ ये क्या मतलब क्या है इसका?
जैसे अभी आप ही ऐसे आ गए, नंगे पुंगे आ गए।
कहाँ नंगे पंगे आ गए? हम तो बताते हैं कि हमें देह अभिमान है, हम कहाँ नंगे पंगे आ गए हैं? जब देवान नहीं रहेगा तो जैन सन्यासियों की तरह कपड़े उतार के देख देंगे है? क्यों है? अभी हम कहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि हमें देवान नहीं है? और यहाँ बैठे हुए कोई भी स्वीकार कर रहे हैं क्या कि हमको देवान नहीं है, हम निराकारी बन गए? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन गए। और तुमको शायद अभी एडवांस कोर्स पूरा नहीं हुआ है, इसलिए नहीं जानते कि जो नई दुनिया बनेगी उसमें देहभान होगा, होगा या नहीं होगा?
नहीं, वही मैं बोलो, काम वस्त्र।
अच्छा, बात जो बात पूछ रहे हैं वो बताओ, हाँ होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा।
नहीं होगा तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे? जब देहभान ही नहीं होगा, देह इंद्रियों का भान ही नहीं होगा, आत्मिक स्थिति होगी, तो ये सब पूछने का क्या मतलब है? कोई मतलब रहा? मतलब ही नहीं रहा। और
बाबा
प्रश्न पूछने से पहले ये देख लिया करो कहीं हमारी मेंटलिटी तो नहीं साबित हो रही है सबके सामने। और
बाबा अष्टदेव में बाबा ने कहा है कि अष्टदेव जो है पक्के एक ही वंशी है, सूर्य वंशी।
एक वंशी है लेकिन आखिरी जन्म में चेंज हो जाते हैं,
जो है वो आखिर जन्म में दूसरे दूसरे जन्मों दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं।
हाँ जी, और पहला?
पहला नहीं आता।
पहला प्रभाव में नहीं आता? प्रभाव में नहीं आता तो फिर विदेशी बन के क्यों आता है? बाप विदेशी बन करके आते हैं या नहीं आते?
बाप विदेशी बन करके आते हैं।
बाप विदेशी बन करके आते हैं तो बच्चों से प्रभावित हो गए ना?
लेकिन वो जानबूझ कर बनते हैं ना, होते तो नहीं।
चलो ठीक है, प्रभावित होकर के आते हैं माने बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए अपने को विदेशी बनाए लेते हैं ना?
हाँ।
तो वो भी विदेशी हो गया,
लेकिन फिर भी गिना तो जाएगा उनको पक्के सूर्यवंशी में ना पापा,
जिसको
आठ जो है अष्टम
सूर्यवंशी हैं या बनेंगे? अगर पहले से ही सूर्यवंशी होते तो बाप को विदेशी बनकर के आने की क्या दरकार थी?
नहीं लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि वो तो फिक्स ही है ना, लेकिन आठ बने बनेंगे
नहीं
बनते हैं।
इस रावण की दुनिया में सब रावण राज्य में रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है?
सब रावण संप्रदाय,
सब रावण संप्रदाय है, कोई सूर्यवंशी नहीं रहता।
लेकिन लंबे समय के साथ देने के अनुसार बाबा,
हाँ लंबे समय तक साथ देने की शूटिंग भी होती होगी, लेकिन जो शूटिंग होती है उसमें भी ऐसे नहीं है कि शूटिंग पीरियड में वो सूर्यवंशियों के ही गुण 100% उनमें देखने में आते हैं। आखिरी जन्म का गुण हरेक में जास्ती देखने में आता है। जो आखिरी जन्म का चोला होता है, जैसे मान लो आंध्रा में जन्म लिया, कर्नाटक में जन्म लिया या मराठावाड़ में जन्म लिया, तो अंदर से भाव बैठा हुआ रहता है कि मैं ये हूं। वो देवान का भाव जल्दी टूटता नहीं है। अगर थोड़ी भी कोई ने बुराई कर दी महाराष्ट्र की या कर्नाटक की या आंध्रा की, तो फट से तनखीले हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी आत्मा अनेक जन्मों की मराठा नहीं है, कन्नड़ नहीं है या तेलुगु भाषा वाले नहीं है, ये बुद्धि में नहीं आता। फट से देवान पकड़ लेते। आत्मा तो किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से या स्टेट विशेष से कनेक्टेड नहीं होती है। आत्मा तो पता नहीं कहां कहां जन्म लेती रही है। तो आखिरी जन्म का जो भान है वो जल्दी नहीं टूटता।
लेकिन बाबा जो आठ में से दो जो बाबा ने बताया फिक्स हो चुके हैं, बाकी अब छह जो है,
हाँ जी,
तो ये जो दो है उनमें तो नहीं होगा ना, उनमें तो विश्व कल्याणकारी का ही भावना होगा।
होगा, चलो होगा,
बाकी छह के मुकाबले
है,
है, है।
अच्छा हाँ,
बाकी छह में हो सकता है कि अपने अपने एरिया के हिसाब से उनको भाव रहा हो, लेकिन जो दो है उनको तो नहीं है। तो दो की अगर बात करें बाबा, तो जो अष्टदेव है जो अलग अलग देवता के रूप में बताया है, तो उसमें ईशान्य की ओर जो नंबर वन है अष्टदेव के, वो ईश्वर को रखा। जो दो सेकंड है जो चंद्रवंशी के धर्म में आखिर में प्रभावित जो हो जाती है, तो वो आत्मा को बाबा ने कहा है कि योगिनी, जो योग अग्नि में ज्यादा समय बिताती है। तो वो बाकी के जो सात देव है अष्टदेव में से, वो क्या अग्नि देव के साथ उनका टैली होता है बाबा?
बाकी छह, सात नहीं बचे।
नहीं, ईश्वर एक ईशान्य और बाकी जो योगिनी है जो सेकंड नंबर की, वो आत्मा का बाकी जो सात देवों में से कौन से देव के साथ होता है, किस देव के साथ कनेक्शन होता है? अग्निदेव
जो आठ है वो चार जुड़वा पुत्र हुए रुद्रमाला के मन के हैं या कोई और है?
रुद्रमाला के,
तो जुड़वा पुत्र हुए ना।
हाँ।
तो जो जुड़वा पुत्र हुए उनमें दो तो पहले हो गए, सूर्यवंश और चंद्रवंश के बगैर तो कोई फाउंडेशन पढ़ने वाला नहीं है।
नहीं पढ़ने वाला।
तो सूर्यवंश और चंद्रवंश है तो फाउंडेशन पढ़ा, बाकी रह गए छह, तो यज्ञ के आज में भी बाकी छह और अंत में भी बाकी छह।
बाबा ये जो आठ देव है जो अलग अलग देव के रूप में पूजे जाते हैं शास्त्रों में, उनमें से जो शास्त्रों का जो ईश्वर है शंकर को पता है।
हाँ।
तो यहाँ पर जो सूर्यवंशी का टॉप हेड है।
हाँ।
वो ईश्वर शंकर है।
हाँ।
और दूसरी जो है।
हाँ।
चंद्रवंशी के धर्म में आखिर में जो प्रभावित हो जाती है।
हाँ।
वो जो आत्मा है वो बाकी के जो शास्त्रों में माने गए सात देव है, आठ देव में से।
हाँ।
बाकी के जो सात देव उसमें से के अग्निदेव का पार्ट है उनका,
ऐसा भी कुछ बताया नहीं, कैसे साबित होता है?
क्योंकि अभी को बाबा ने योग अग्नि के रूप से बताया बाबा, और योगिनी जो है वो तो ज्यादा
घिनी घिनी से मतलब कोई अग्नि थोड़ा ही होता है
भाई। लेकिन योग तो याद के लिए तो अग्नि बताया ना,
याद की अग्नि है लेकिन काम अग्नि भी है क्रोध अग्नि भी है।
लेकिन देव में कहाँ पर काम अग्नि और क्रोध अग्नि की
नहीं
होता,
अग्निदेव नहीं होता है
तो अग्निदेव क्रोध अग्नि
क्रोध जो क्रोध का देवता है वो नहीं है, धर्मराज क्रोध का देवता नहीं है। ये जो पांच है जो
लेकिन जब संपन्न
ये जो पांच बताए गए हैं तत्व है, जो जड़त्व की मूर्तियां हैं ये देवता नहीं है, वायुदेव अग्निदेव ये देवता ही तो है,
देवता ही है बाबा है। तो क्या ये पांच जो देवता है अग्निदेव वायुदेव और जल है, तो ये जो देवता क्या पांच काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसमें टैली किया जाता है?
ये तो जड़मयी तत्व है, जो जड़त्व है वो योगी कैसे होगा, जिसमें जड़त्वता जड़तत्व होगा वो योगी होगा क्या?
योगी नहीं होगा।
हाँ जी वो नहीं हो सकता।
तो योग का टैली किस हिसाब से किया बाबा, क्योंकि बाबा ने योग का भी अग्नि के साथ टैली किया है और अग्नि को देव के रूप से तभी माना जाएगा ना बाबा, जब
वो सूर्य वंश है और चंद्र वंश है वो विशेष सहयोगी एक दूसरे के क्यों बनते हैं, और इस्लाम वंशी बौद्धी वंशी क्रिश्चियन वंशी या सिख वंशी इतने सहयोगी क्यों नहीं बनते, क्योंकि नियम बना हुआ है जो सहयोगी सो योगी, जो जितना योगी सो उतना सहयोगी। सहयोग देने की बात है, कोई बात में असहयोग करने की बात ना हो, वाचा में भी असहयोग नहीं, कर्मणा में भी असहयोग नहीं, संकल्पों में भी किसी बात का असहयोग नहीं, क्लियर करना बात अलग है। ये बात समझ में नहीं आई लेकिन क्लियर होने के बाद असहयोग का नाम निशान न रहे तो सहयोगी हो गया। तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों की शक्ति से सब प्रकार से सहयोगी हो गया तो योगी नहीं है।
बाबा लेकिन यहाँ पे अग्निदेव के साथ क्यों कैसा कनेक्शन होगा,
अग्नि देवता अलग है,
माना उनका योग अग्नि से कोई कनेक्शन नहीं,
उनका योग अग्नि से भी कनेक्शन है तो क्रोध अग्नि से भी कनेक्शन है, काम अग्नि से भी कनेक्शन है।
बाबा लेकिन जैसे पांच जो बताया काम अग्नि
जो तो खास जो चंद्रवंश का बीज होगा सूर्यवंशियों में तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं, क्रोध कहाँ से आया, उसी में क्रोध आ जाएगा तो वैष्णवी देवी में भी क्रोध आ जाएगा, फिर जो जगत माता का पार्ट बजाने वाला बीज है चंद्रवंशियों का उसमें भी होगा ही होगा, और वो तो पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी में तो पांचों ही तत्व रहते ही हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद, तो और चंद्रवंशियों का क्या हाल होगा फिर।
फिर बाबा दूसरा देव कौन हो गया,
अब कोई भी हो जो होगा सो सामने आएगा।
नहीं शास्त्रों के जो सात देव है को छोड़कर उनमें से कौन है
विचार करो कौन सा हो सकता है।
अच्छा बाबा अभी संन्यास धर्म की जो आत्मा है सूर्यवंशी में से ही जो संन्यास धर्म में कन्वर्ट होती है, बाबा ने तो कहा है कि बाकी और धर्मों के अनुसार उनमें प्यूरिटी ज्यादा होती है
सन्यासियों में।
हाँ
निवृत्ति मार्ग वाली प्योरिटी और धर्म वालों के मुकाबले जास्ती होती है, निवृत्ति मार्ग वाली प्योरिटी,
निवृत्ति मार्ग वाली
सारे ही धर्म जो भी विधर्मी हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं, लेकिन जो भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनके मुकाबले जो संन्यास धर्म की आत्मा है उनमें जास्ती प्योरिटी की पावर है।
और बाबा ने बोला जिसमें ज्यादा प्योरिटी होती है उसमें ज्यादा ज्ञान बैठता है,
ज्ञान बैठना एक अलग बात है और ज्ञान को धारण करके दूसरों को धारण कराना और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रूप में लाना और दूसरों को प्रैक्टिकल रूप में ला करके दिखाना ये अलग अलग बात है। भीष्म पितामह प्रकृष्ट सन्यासी थे, प्योरिटी की पावर भी उनमें बहुत ज्यादा थी, धारणा शक्ति भी ज्यादा थी, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान काम में लाना चाहिए वो नहीं ला सके, क्योंकि उनकी प्योरिटी झूठी प्योरिटी है। जो सच्ची प्योरिटी है साथ में रह करके पवित्र रह करके दिखाना, वो प्योरिटी नहीं है, दिखावे की प्योरिटी है।
लेकिन बाकी जो जितने भी
फिर भी इतना तो बोला है कि संन्यास वर्ण की धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तो तुम्हारी विजय हो जाएगी।
वो प्योरिटी के आधार पे ही होती है।
हाँ जी,
तो प्योरिटी जितनी होगी उतने ज्ञान धन वो अपने पास धारण कर सकती है बाबा।
हाँ, लेकिन सच्ची प्योरिटी होनी चाहिए, इस बात को वो माने ना, स्वीकार करे ना, वो तो कि हम साथ रह करके विजय पा करके दिखाएंगे। हम इस मान्यता को मानते हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा।
जी बाबा, जो सात देव है इनमें से जो कुबेर है जिसे ज्ञान धन का ज्ञान का राजा बता, अपना धन का जो धनी सबसे बड़ा धनी बताया,
सबसे बड़ा धनी जो प्रैक्टिकल धारणा में धनी है।
हाँ,
जो प्रैक्टिकल धारणा में धनी नहीं है वो कितना भी उसके पास ज्ञान धन हो, कितना भी स्थूल धन हो, कितना भी दिव्य गुणों का धन हो बघारने के लिए, लेकिन वो धनी नहीं है।
अष्टदेव में तो सब होती है ना बाबा प्रैक्टिकल।
अष्टदेव में ही अगर कोई देवता है और उसमें प्रैक्टिकल धारणा नहीं है ज्ञान की
तो अष्टदेव में कैसे
तो वो धारणा नहीं है। इसलिए जो कुबेर है उसमें प्रैक्टिकल धारणा होनी चाहिए।
प्रैक्टिकल धारणा होगी तभी तो अष्टदेव में गिने जाएंगे ना बाबा।
सब में नहीं होती है
अष्टदेव।
जो अष्टदेव है वो सब में एक जैसी धारणा नहीं हो सकती,
एक जैसी नंबर वार होगी।
हाँ जी,
लेकिन यही तो प्रैक्टिकली तो होगी ना बाबा।
तो उसमें नंबर वन नंबर टू वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो गए।
लेकिन बाबा ने फिर भी बोला सिर्फ लाइट फिनिशिंग का अंतर है।
अरे बताया ना, उसमें जो आठ नंबर है उन आठ नंबरों में कोई पहला नंबर और दूसरा नंबर भी होगा जो प्रैक्टिकल धारणा करने में आगे हो, तो कौन हुए? तो कुबेर हो गया ना। अरे जो नंबर सेकंड ले लेता है वो कौन सा हुआ? जो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल धारणाओं में आगे जाता है। और
बाबा ने बताया कि वो सत्यवी आठवां नारायण है। सत्यवी जो आठवां नारायण होता है वो राम से इतना धन लेता है जो ना देने की स्थिति में, जो ना चुप्तू कर पाने की स्थिति में फिर उसको राजा ही सौंपनी पड़ती है।
हाँ जी,
तो वहाँ पर कोई स्थूल धन तो होता नहीं।
अरे वहाँ की बात ही नहीं, यहाँ शूटिंग हो जाती है, वहाँ तो प्रैक्टिकल ड्रामा चलता है, असली काम कहाँ होता है? जो यहाँ शूट हो गया रील में नुद गया वही वहाँ चलना है, तो प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? प्रैक्टिकल यहाँ होता है या वहाँ होता है? यहाँ होता है, तो यहाँ जो आठवां नारायण बनने वाला होगा वो जहाजों में घूमता रहता होगा तब तक राम वाली आत्मा ने बाजी मार ली। ब्राह्मणों का जो काम है ज्ञान का लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और दूसरी आत्माओं को मनन चिंतन मंथन करने के लिए बाध्य करना, ब्राह्मणों का काम क्या है? तो ये काम कहाँ किया गया होगा? त्रेता में किया होगा, त्रेता के आदि में किया गया होगा, या यहाँ त्रेता के शूटिंग के आदि में किया गया होगा? जब कलयुग व सतयुग की शूटिंग का अंत 40 वर्ष पूरे होते हैं और त्रेता युग की शूटिंग का आज ही होता है, तो उस समय जिस आत्मा ने ये मंथन किया, मंथन करके जो रस निकला और उस रस में, उस सोम रस में सारे ब्राह्मणों को देवात्माओं को विभोर कर दिया, तो प्राप्ति उसे हो जाती है, वो साहूकार बन जाता है रत्नों का। और जो नारायण बनने वाली आत्मा है आखिरी जन्म की, वो बेगर हो जाती है, सारी राजाई सौंप देनी पड़ती है। आया समझ में? हाँ जी
बाबा, पांडवों ने सब सहा कर दिया, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पांडवों ने सब कर दिया, वो तो दुर्योधन दुशासन के हाथ में गया, ऐसा क्यों?
पांडवों ने सब स्वाहा कर दिया,
बाल बच्चे धन सब यज्ञ में।
हाँ, जुआ खेलने के लिए भगवान ने कहा ये बेहद का जुआ खेलो। कौन सा बेहद का जुआ है? ईश्वरीय सेवा में तन धन धाम सुहद परिवार की बाजी लगाओ। तो जिन्होंने बाजी लगाई सच्चाई से वो बाजी मार गए, और जिन्होंने बाजी तो लगाई लेकिन झूठे रहे, अपनी बाजी अपनी मुट्ठी में रखी और पांडवों की भी अपनी मुट्ठी में ले ली, तो कैसे विजयी होंगे? ये तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ईश्वरीय लॉटरी है या दुनियावी लॉटरी है, इसमें कोई चालाकी तो किसी की चल ही नहीं सकती।
बाबा का यादगार है कि वो भोग भोगियों के साथ रास करता है, डांस करता है, तो बाबा 5000 साल के बाद आकर सिर्फ ज्ञान का ही डांस करेंगे या प्रैक्टिकल में कभी डांस करेंगे?
वो प्रैक्टिकल डांस तुम कर लेना।
पाँच हजार साल के बाद आते हैं।
हाँ,
तो सिर्फ ज्ञान का ही डांस करेंगे क्या?
और सचिव त्रेता में तो डांस करते ही है इच्छू रूप में, वहाँ तो कोई बात ही नहीं। और द्वापर कलयुग में भी जड़ तुम्हें ही बुद्धि होती है या भगवान आके चैतन्य बुद्धि बनाते? जड़ तुम्हें ही बुद्धि होती है, कलयुग में भी और जामड़ी बुद्धि हो जाती है। तो जिनकी जामड़ी बुद्धि है वो जड़ डांस करेंगे, और जब भगवान आकर के चैतन्य बुद्धि बनाता है तो कौन सा डांस मन में चलना चाहिए? है ये अंदर की बात है।
बाबा
है
अष्ट देव के लिए बोला है कि अष्ट भगवान बाप के पैलौटी के बच्चे हैं,
है
भगवान बाप के पैलौटी के बच्चे हैं
है।
और त्रिमूर्ति के लिए बोला है कि मैं तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, तो ये दोनों में क्या?
वो सूक्ष्म देवताएं हैं, सूक्ष्म शक्ति वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो सूक्ष्म शरीर वाले देवताएं हैं या स्थूल शरीर वाले हैं?
प्रैक्टिकल में तो स्थूल शरीर है ना?
है
प्रैक्टिकल में तो स्थूल शरीर है।
विष्णु को है सूक्ष्म शरीर?
विष्णु जब प्रत्यक्ष हो गए तो
होगा
स्थूल शरीर होगा ना बाबा?
कोई होगा चार भुजाओं वाला?
लेकिन चारों शक्तियों का जो कम्बिनेशन है वही तो विष्णु होता है ना।
अच्छा, शंकर कभी मरता है कि नहीं मरता है?
मरते तो दिखाया नहीं गया,
मरते कहीं दिखाया नहीं, लेकिन वास्तव में तो शरीर छोड़ता है ना,
वो एक सेकंड की बात है,
वो एक सेकंड की बात है। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीनों देवताएं हैं उनमें दो नष्ट हो जाते हैं और एक रहता है?
नहीं, तीनों मर्ज हो जाते हैं। आप
मर्ज हो गए तो बहुत बात कही, जब संगम युग का काम खत्म हो जाता है तो तीन मूर्तियों का काम भी समाप्त हो जाता है, बाकी साकार तन में जिसमें प्रवेश करता है वही एक रह जाता है, उसका गायन चलता है कि वो कभी हिम्मत हारने वाला नहीं है। और आखिरी जन्म में जब हिम्मत हारने की बात आती है तो गुहार लगाता है सच्चे दिल पर, साहबराजी हो जाता है, अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दे, ले संभालो अपनी धर्मशाला, हमें तो जो पाना था सो पा लिया। और
बाबा ये जो आपने बताया 5000 साल का ड्रामा है, 5000 साल भी ऐसे ही हुआ था?
आपने बताया, हमने स्वीकार नहीं किया।
मैं स्वीकार किया
अच्छा।
तो पाँच हजार साल पहले भी ब्रह्मा विष्णु शंकर आए थे तो उनके बच्चे भी सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर है,
तो है?
आप अलग से कैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर बन
गए?
सभी वही है ना,
सभी वही है। कौन सी आत्मा ऐसी है जो स्थापना नहीं करती है देवी गुणों की अपने अंदर, देवता नहीं बनती है, देवी गुण धारण नहीं करती है, सात्विक नहीं बनती है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सभी तो नंबरवार सात्विक बनते हैं, सतगुणी बनते हैं या नहीं बनते हैं? सब बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, आत्मा ब्रह्मा का भी काम करती है, फिर उन देवी गुणों की पालना भी करती है, विष्णु का भी काम करती है, फिर जो रहे बचे दुर्गुण हैं उनका सफाया भी करती है। तीव्र योगाग्नि के द्वारा तो हर आत्मा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप है। परमात्मा क्या?
सुप्रीम सोल तो अलग,
सुप्रीम सोल तो अलग है। और
मतलब शिव भी जो है वो 5000 वर्ष के ड्रामा में बंधा हुआ है, वो भी बंधन मुक्त नहीं है।
जब वो ही बंधन मुक्त हो जाएगा तो सारे ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं आत्मा तो सदाकाल की मुक्ति मिल जाती है, भक्ति मार्ग में कहते हैं, वो तो पहले से ही तैयार है कि हमको सदाकाल की मुक्ति मिले, सिर्फ उनके सामने यही बात काम करती है कि अगर तुमको सदाकाल की मुक्ति मिल सकती है तो भगवान को काहे के लिए तुमने कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार में बांधा हुआ है, तो निरुत्तर हो जाते हैं।
टेंशन रहता ना 5000 साल के बाद फिर आना है, फिर आना है, फिर आना, तो अभी क्यों नहीं आ जाते? 2000 साल बीत जाते तो तभी क्यों नहीं आ जाते? मतलब वैसा है,
उनको टेंशन थोड़ा ही रहता है, जैसे हमको अटेंशन रहता है कि हम नई दुनिया में जाएं, सुख में जाएं। ऐसे ही जो बाप होते हैं, जो असली बाप होते हैं, उनकी भी यही तमन्ना रहती है, हम सुखी हो या ना हो हमारी तो गुजर गई, लेकिन मेरे बच्चे सदा सुखी रहे।
पंजाब की जो पांच नदियाँ दिखाई ना, इनमें से जो दो नदियाँ जो है इंदस और सतलज, वो मानसर और कैलाश से निकलते हुए पश्चिम की तरफ जाती
है,
वो पश्चिम की तरफ जाती है, और बाकी के जो वो भी, और इंदस की नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र से भी लंबी है।
हाँ जी,
25 किलोमीटर वो पश्चिम की तरफ जाती है, उसका रूप जो है पश्चिम।
कौन सी नदी किससे लंबी है?
इंदस नदी जो है, इंदस
सिंधु नदी। हाँ जी,
इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र से भी लंबी है, 30 किलोमीटर, 2730 किलोमीटर है।
नहीं, उसका बहाव जो है सीधा सीधा अरब सागर में है,
पंजाब से होते
हुए। हाँ जी,
सिंध से होते
हुए। और ब्रह्मपुत्र का बहाव
पूर्व की तरफ,
पहले पूरब में है, फिर पूरब से दक्षिण में है, दक्षिण से फिर पश्चिम की तरफ आकर के बंगाल सागर में आकर के गिरती है, इसलिए लंबाई ज्यादा हो जाती है। क्या पूछना, क्या चाहते हैं?
मानसरो से निकलते कैलाश,
हाँ,
उसका जो मतलब बाप से निकलती है,
हाँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब निकलते कहाँ से हैं? सबका बीज तो एक ही है। और
साउथ अफ्रीका में ऐसा अभी पेपर में दिया था, बीच में न्यूज में, साउथ अफ्रीका में गंगा नदी बह दिया करके बोलते, वहाँ पे भी जैसे अपने हिंदू धर्म के ऐसे मानते हैं वो नदी के पानी को,
और तो दक्षिण भारत में भी मानते हैं दक्षिण गंगा, तो उससे हो जाता है क्या?
अफ्रीका वहाँ पे
बाबा, आपने 100 साल के संगम को 5000 वर्ष कैसे कन्वर्ट कर दिया?
100 साल का संगम युग
को 5000 साल में कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि बाबा आते हैं 1936 में और 2036 तक, तो 100 साल का संगम युग हो गया।
जो जो शूटिंग पीरियड है वो छोटा ही होगा या बड़ा होगा? जो ड्रामा होता है, ड्रामा ये तो बेहद का ड्रामा है, कोई हद का ड्रामा तो नहीं है।
एक्चुअल शूटिंग 76 से शुरू होनी चाहिए ना,
वो तो एडवांस वालों की, जो एडवांस में नहीं है उनकी शूटिंग नहीं होती है क्या?
उनका तो बोल दिया ना 40 साल में उनकी तो विपरीत बुद्धि हो गई, उनका तो शूटिंग ये
मैंने उनको उनको ड्रामा से ही निकाल देंगे क्या है?
जब वो तो बाप से विपरीत बुद्धि बने,
जो विपरीत बुद्धि हो गए तो उनको, जो बच्चे बाप से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं लेकिन बाप से पैदाइश तो है तो उनको घर से बाहर निकाल देंगे क्या? पालना नहीं लेने देंगे है?
अगर जो पूरी गीता का भगवान बनते बैठा हो
हाँ?
फिर साबित भी नहीं करने देता हो
हाँ?
फिर उसकी कैसी पालना?
बच्चा बुद्धि पहले ही बता दी है, ये ब्रह्मा बच्चा है, बेबी बुद्धि है, बेबी है, जितने भी बेबी हैं उनमें फर्स्ट क्लास बेबी कौन सा है? है तो सलोना ना, तो कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि को समझाया जाता है कि बच्चा अगर गलती करता है तो धाड़ से थप्पड़ मार के उसको खत्म कर दिया जाता है, तो बार बार समझाना है। जो दिव्य गुणों में सब दिव्य गुणों का राजा है उस गुणों को धारण करने में अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, इस विशेषता को भूल जाना है। जो सर्व गुणों का राजा है उस गुण को धारण करने में अव्वल नंबर है सहनशील, तो उसके गुण को भूला नहीं जा सकता है। वो किसी को दुख देने का उपक्रम करने वाला बच्चा नहीं है। भगवान भी तो क्या टाइटल लेता है, विशेष सुखदाता, तो भगवान जब सुखदाता है और उसका बच्चा भी किसी को दुखदाता नहीं है, दुख देने की बात सोचता भी नहीं है, तो भगवान के नजदीक है या दूर है? कोई तो नजदीक ही है। और
ये जो आत्मा होती है वो एक साथ दस जन्म में प्रवेश कर सकती है कि एक ही जन्म में प्रवेश कर सकती है?
एक साथ दस जन्म में प्रवेश कर सकती है,
एक साथ दस जन्म होते हैं,
एक साथ दस गर्भों में प्रवेश कर सकती है?
कर सकती है क्या?
एक साथ दस गर्भों में प्रवेश करेगी?
मुझे नहीं पता,
पूछते काहे के लिए?
नहीं, आपको पूछ रहे, आपको पता है।
क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात जो तुम्हें पता ही नहीं है?
बाबा त्रेता युग के अंत में संख्या बाबा ने 10 करोड़ तक बताई, 8-10 करोड़।
हाँ जी,
तो त्रेता युग के बाद बाबा ने बताया अर्ध विनाश होता है, उसके बाद द्वापर युग शुरू होती है।
हाँ जी,
तो वो अर्ध विनाश में क्या देवताओं की वहाँ पर मृत्यु होगी बाबा?
देवताओं का मृत्यु होगी तो दूसरा नया जन्म होगा,
तो वो देवता उस प्रलय के गर्त में चले जाएंगे?
आत्मा थोड़ी जाती है,
आत्मा नहीं लेकिन वो जो शरीर धारण किए,
शरीर धारण करके ऊपर से एक बार आ गए, वो शरीर छोड़ेंगे भी तो भी क्या करेंगे, कोई न कोई गर्भ में प्रवेश करेंगे, या तो शरीर छोड़ेंगे या तो शरीर नहीं छोड़ेंगे।
सभी तो नहीं,
जब आधा विनाश होता है तो सभी का तो मृत्यु नहीं हो सकता शरीर का, कुछ ऐसे भी बचे होंगे जो शरीर से सुरक्षित रहते हैं, कुछ ऐसे भी बचे होंगे जिन्होंने शेष इंद्रियों का ज्यादा ही दुरुपयोग किया होगा आखिरी जन्म में।
लेकिन बाबा ने बोला है कि देवताओं की इच्छा मृत्यु होती है, तो वहाँ पर जब प्रलय होगा तो इच्छा से मृत्यु कैसे होगी?
आखिरी जन्म होता है उसमें इच्छा मृत्यु की बात नहीं रह जाती, त्रेता के अंत का जो आखिरी जन्म है वो तो सबसे गिरती कला का जन्म हो गया स्वर्ग का। इसमें भगवान का बना बनाया घर गिर जाता है, जो दुष्ट बीज हैं उनके हाथ में सत्ता आ जाती है।
तो बाबा ने बोला है
दुरुपयोग करते हैं, फिर
बाबा ने बताया बाबा मुरली में कि जैसे प्रलय हो जाता है द्वैत,
प्रलय होता ही नहीं कभी,
नहीं उधर जहां अर्ध विनाश होता है के बाद जब द्वापर शुरू होता है, बाबा ने वाला द्वापर का मतलब ये जहाँ द्वैतवाद शुरू होता है, द्वैतवाद शुरू होती है। द्वैतवाद माना ऊपर से इब्राहिम की सोल
आखिरी जन्म में प्रवेश करती है त्रेता के अंत में,
त्रेता के अंत में प्रवेश करती है।
हाँ, और जो उसके फॉलोअर्स हैं जिन जिन में वो प्रवेश करते हैं इब्राहिम और इब्राहिम के फॉलोअर्स, वो दृष्टि के करप्शन में सहज ही आ जाते हैं। जब दृष्टि के करप्शन में आते हैं तभी विनाश हो जाता है।
माने इब्राहिम आने के बाद प्रलय होता है?
इब्राहिम आता है उसी समय से पतन शुरू होता है। जो अकाले मौत है वो अकाले मौत तो देवताओं के युग में नहीं हो सकता। जो देव आत्माएं हैं जब दुष्टों के संग के रंग में आती हैं तब पतन हो जाता है धड़ाक से।
तो वास्तव में इब्राहिम कब,
जैसे कोई बीमारी फैलती है ना तो तेजी से कीटाणु फैल जाते हैं, तो ऐसे ही ये अंतिम जन्म जो त्रेता का है वो उस जन्म में जो यथा राजा होता है तो बहुत कमजोर किस्म की आत्मा है। देव आत्माओं में उनको वो आकुपाई कर लेते हैं, होते तो आर्य समाधि ही है। आर्य समाधि तो जो आया उसी में कन्वर्ट होने वाले होते हैं।
नहीं लेकिन बाबा ऊपर से जब इब्राहिम आती है, इब्राहिम की सोल जब आती है इस सृष्टि पर, तो वो जो प्रलय होता है उसके बाद होता है, इब्राहिम आने के बाद अर्धविनाश होता है।
हाँ जी,
माना इब्राहिम आता है त्रेता युग में ही,
रावण जब से आते हैं तब से परिवर्तन शुरू होता है।
लेकिन इब्राहिम जब आएगा इस, तो उनका जो आधार है वो तैयार होना चाहिए ना बाबा?
हाँ तैयार होता है।
तो बाबा ने बताया है कि जितने भी धर्म हुए तो धर्म के सात्विक फाउंडेशन के लिए माँ और बाप जाते हैं। तो इब्राहिम जो इस्लाम धर्म का सात्विक फाउंडेशन होगा तो उसमें माँ कौन बनेगी?
तो मालूम है कि जो नारायण और नारायणी होंगे दूसरे जन्म के, वो आखिरी जन्म के वो ही बनेंगे।
लेकिन वो सात्विक फाउंडेशन
जो डाल जो जो सत्युग के आदि में राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले हैं वो सेकेंड नारायण और सेकेंड नारायणी है। वही सेकेंड नारायण और नारायणी जो है आखिरी जन्म में त्रेता के अंत में जाकर के जो भी आधार ग्रहण करते हैं अपने शरीर का उसे ऊपर से आने वाली सारी सोल प्रवेश करती है इब्राहिम की।
नहीं, नहीं, आधार को जन्म देने वाले तो यहाँ एडवांस का कोई बीज होगा ना बाबा?
उनको जन्म देने वाले कोई बीज है और उनको भी जन्म देने वाला कोई बीज है
वो बाप।
हाँ जी,
और उन बाप बाप की जो जोड़ीदारनी होगी वो तो त्रेता युग में तो छोटी माँ हो जाती है।
कोई भी
एक ही है ना बाबा, इस जन्म की
जो भी हो, जो भी इससे कोई खास बात बनती बिगड़ती नहीं है। जो भी होंगे वो जीवित रहेंगे।
हाँ, जीवित रहेंगे बने।
और अर्धविनाश होगा उसमें प्रभावित होने वाली आत्माएं दूसरे प्रकार की होंगी जो अपनी हिम्मत को भूल जाएंगी। उमंग उत्साह हिम्मत जब खत्म होती है तो प्रभावित हो जाते हैं।
माना बाबा जो इस्लाम धर्म का कोई बीज है जो त्रेता के अंत में जब उनका जन्म होगा वो राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा के थ्रू होगा।
ठीक है,
माना सीता वाली आत्मा निमित्त बनती है ना सात्विक फाउंडेशन बाप के साथ।
ठीक है,
इस्लाम धर्म की सात्विक फाउंडेशन के लिए।
ठीक है, बीज है उन बीजों से दूसरे बीजों का जन्म होता है और उन बीजों से आधार मूत्रों का जन्म होता है। जो मूल बीज है वो तो सृष्टि के माता पिता ही है।
लेकिन बाबा ने कहा कि हिस्ट्री तो सिर्फ 2500 साल की है, अभी ये जो इब्राहिम के आई और इब्राहिम के
ये जो वृत्ति कला है वो कौन से जन्म से शुरू होती है?
द्वापर से
नहीं,
त्रेता के अंत से।
त्रेता के अंत में तीन जन्म है जो कटे हुए दिखाए गए हैं सीढ़ी में, और तीनों पतन युग, त्रेता का पतन का युग है।
लेकिन उसका तो हिस्ट्री नहीं है ना बाबा?
हिस्ट्री तो आखिरी जन्म की भी नहीं है त्रेता के अंतिम, बस इतना ही है जो बाबा ने बताया है कि अर्धविनाश होता है बस। यज्ञ के आदि में भी वो कीर्ति कला के निमित्त बनते हैं, त्रेता के अंत में भी कीर्ति कला के निमित्त बन जाते हैं। उनका पार्टी है कीर्ति कला का, कीर्ति कला में ले जाने का। और
ये जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए सतयुग त्रेता युग ये कलयुग वो सब नहीं होता, तो खाली हम लोग के लिए क्यों होता है?
क्यों किसने कहा कि पशु पक्षियों के लिए सतयुग त्रेता युग नहीं होता है? वहाँ पशु पक्षी नहीं होंगे क्या है?
वो तो सदा खुश रहते, मैं तो ऐसा देखा हूँ।
पक्षी सदा खुश रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते? तुम पक्षियों के साथ उड़ते रहते हो क्या?
तो सदा खुश दिखते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि उनमें मतलब सतयुग त्रेता युग होता है।
जो पक्षियों का, जो जानवरों का हॉस्पिटल है वहाँ जाके देखो। और
बाबा ब्रह्मा के लिए गाय 100 साल में अमर लोग स्थिति प्राप्त करते हैं, और आत्मा के लिए लागू होता है क्या?
बिल्कुल। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, जिनकी जिनकी वानप्रस्थ अवस्था होगी तो वानप्रस्थ अवस्था में जैसे ब्रह्मा ने अनुभव किया वैसे हर नंबर वार ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा है, वो अनुभव करेगी। अमर लोक का भी अनुभव करेगी, जैसे ब्रह्मा की आयु 100 साल में पूरी होती है मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक के बाद कौन सा युग लोक शुरू होता है उसके लिए? अमर लोक। अमर लोक का फाउंडेशन वहीं से पड़ जाता है। ऐसे ही हर आत्मा के लिए टाइम अलग अलग मुदा हुआ है। और
सर आत्मा को कैसे महसूस होगा?
जैसे ब्रह्मा को महसूस होता है वैसे उस आत्मा को भी महसूस होगा।
ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद अनुभव किया?
आज तो दूसरे ब्रह्मा भी तो हैं जो शरीर नहीं छोड़ते हैं, जीते जी शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा भी तो हैं।
वो भी अमर लोक पे जाएंगे?
हाँ जाएंगे
शरीर के साथ।
हाँ
उसी स्थान जहाँ पे बाबा ने शिवालय स्थापन किया है, बाबा ने जहाँ भी शिवालय स्थापन किया है प्रैक्टिकल में वहाँ पे वो
कहाँ शिवालय स्थापन हो गया?
यहाँ भी गुप्त स्थापन किया।
अभी शिवालय कहाँ स्थापन हो गया?
मन बुद्धि से तो स्थापन।
मन बुद्धि से शिवालय ऐसा चाहिए जहाँ मन के संकल्पों से भी कोई विरोधाभास न हो। अभी तो कुटाई पिटाई हो रही है, मकान जब फाउंडेशन डाला जाता है तो धुनाई पिटाई ज्यादा होती है कि नहीं होती है? है अच्छी तरह कूटा जाता है। ये कैसे कह सकते हैं कि सबके संकल्प मिलकर के एक हो गए? और
अगर एक आत्मा ऐसे भाव रखती है कि सभी के संकल्प एक हो गए हैं तो क्या नहीं हो सकता?
अकेला चना बाहर फोड़ देता है क्या? तो शिव बाबा को बच्चों का सहयोग लेने की भी दरकार नहीं? तो मुसलमानों की थ्योरी हो गई, अल्लाह मियां ने पृथ्वी बनाई, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आकाश बनाया, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया। अल्लाह मियां जो चाहे सो एक सेकंड में कर सकता है। संसार बनाना है तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा, एक दो चार की बात नहीं है।
बाबा लौकिक दुनिया में जो भ्रष्टाचार होता है वो लौकिक धन का भ्रष्टाचार होता है तो उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया। तो ज्ञान में भी भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा ना? ऐसा
हर चीज का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे मतलब कैसे ज्ञान रत्नों का भ्रष्टाचार होगा?
वहाँ दुनिया में समझते हैं धन का भ्रष्टाचार होता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? हैं? कर्मेंद्रियों से भी होता है, दृष्टि से भी होता है और वाइब्रेशन से भी भ्रष्टाचार होता है। अगर वाइब्रेशन, अगर वृत्ति जो है वो एक के अलावा कहीं दूसरे में जाती है तो क्या हुआ? दृष्टि वृत्ति भ्रष्ट हुई या नहीं हुई?
यहाँ भ्रष्ट आचरण को भ्रष्टाचार कहते हैं।
हाँ भ्रष्ट आचरण की भी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? पहले मन में आएगा
मन में
कि पहले इंद्रियों में आएगा?
मन में आएगा।
मन में आता है। मन के वाइब्रेशन दूषित होते हैं तो कितना भी उनको कंट्रोल करना चाहें वो फिर है वाचा से लेकर कर्मेंद्रियों तक पहुंच जाते हैं।
बाबा हाँ आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी
क्यों लगेगी?
क्यों लगेगी?
हाँ
तो वो कौन से बच्चों की लगेगी?
हाँ
जो ढाई लाख जो आत्मा है उनकी या 4.5 लाख
मन बुद्धि से तो सभी की क्यों लगेगी?
स्कूल में भी लगेगी।
500-700 करोड़ में से कोई ऐसा रह जाएगा जो मन बुद्धि से क्यों न लगाए? इधर एटम बम फट रहा है, उधर फट रहा है, उधर भागदौड़ मची हुई है, इधर भागदौड़ मची है, कहाँ जाएं, क्या करें? उस समय याद तो सभी करेंगे, टीवी भी देख रहे होंगे, अखबारों में भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? मन बुद्धि तो सबकी जाएगी ना, वहाँ
तो पता होगा उसी टाइम।
है सारी दुनिया को पता नहीं चलेगा कि गॉडफादर आया हुआ है?
तो ठीक है, तो कहाँ आए वो उनको थोड़ा
है? ये क्या बात है? आज की दुनिया में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं देश विदेशों के, वो तक प्रत्यक्ष हो जाते हैं देश देश में, गांव गांव में। आज इंडिया का हर गांव का आदमी जानता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। वो तो एक तरह से साधारण बात हो गई, सर्वसामान्य बात हो गई। ये तो भगवान की बात है जो हर धर्म को, धर्म वाले भगवान को मानते हैं।
तो जो लाइन स्कूल में भी लगी
है, मन बुद्धि से भी लगेगी, तो जो स्थूल से प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके दिखाएंगे उनकी भी लगेगी। जो जैसा पुरुषार्थी वैसी उनको प्राप्ति।
4.5 लाख आत्माओं की
उनको तो लगेगी ही लगेगी।
आपने कहा है कि संगम युग में जो होता है उसका ब्रॉड में शूटिंग हो जाता है,
संगम युग में कोई ब्रॉड में शूटिंग नहीं होता?
ब्रॉड में ट्रांसफर,
संगम युग में जो शूटिंग होता है वो ब्रॉड में भी प्रैक्टिकल होता है।
तो अभी संगम युग में अगर कोई आत्मा में बार बार तकलीफ दे रही है और हम सहनशीलता सहनशीलता करके काम ही करते जा रहे हैं,
क्या करेंगे? तलवार मारेंगे उसको?
वो शूटिंग आगे भी वही ही होगी ना, ब्रॉड में वही शूटिंग होगी ना।
वो हमने उसको तंग किया होगा तो वो हमको तंग कर रही है।
कहा था
जब हमने तंग किया था तब सोचा था आखिर इसको कहाँ तक तंग करें। जब राजाई के नशे में आते हैं, अहंकार बढ़ता है गद्दी का, तो सोचते हैं राजा कि हम क्या करने जा रहे हैं। बस गुस्सा आ गया तो आ गया, जरूर सवार हो गया तो सवार हो गया।
बाबा परिस्थिति और आपका श्रीमद हमें कुछ करने ही नहीं देता है।
करेंगे क्या?
वही बात है, पूछ रहे।
परिस्थिति जो है वो परिस्थिति बनाई किसने? परिस्थिति बनाने वाला कौन? जो भी स्थिति हमने बनाई है वो हमारी बनाई हुई है, बाबा ने नहीं बनाई। ऐसे नहीं कि बाबा ने श्रीमत दे दी इसलिए हमको ऐसा हो रहा है।
बाबा ने लिखा है परिस्थिति और समय देखकर भी हमें एक्ट करना चाहिए।
हाँ, परिस्थिति से प्रभावित हो जाना चाहिए। ये कहा?
नहीं, परिस्थिति और समय देखकर भी वो समय कौन सा ये करना चाहिए वो हमें अभी जानना चाहिए।
हाँ वो ठीक है, प्रभावित तो नहीं होना चाहिए ना। बस हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। ओ, गले तक भी आ जाए तो भी हिम्मत नहीं छोड़नी। तो बाबा बैठा है, बाबा तो कहते हैं जब चोटी तक डूबने लगते हैं तो चोटी पकड़ के उठा लेता। अभी तो चोटी कटा दी, पकड़े क्या? जैसे विराट रूप के चित्र में उन्होंने चोटी को ही उड़ा दिया।
सब आत्माओं को परम धाम होके वापिस आना है। ब्रह्मा बाबा 2008 साल में कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो वो कैसे परम धाम जाएंगे?
मन बुद्धि नहीं है परम धाम जाने के लिए?
स्कूल में नहीं
वो प्रवेश करके उनको संघ का रंग नहीं लगता। जो राधा कृष्ण की आत्माएं हैं वो प्रवेश करके संघ का रंग लेती नहीं है। यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करती, करती है। तो जो राम की जो स्टेज बनेगी वो ही उसकी बुद्धि में प्रवेश होने वाले की वो ही स्टेज बन जाएगी। जब शिव प्रवेश करके राम वाली आत्मा जो दुनिया की सबसे पतित आत्मा बन जाती है उसको आप समान बना सकता है, तो राम वाली आत्मा के संग के रंग में रह करके कृष्ण की आत्मा बाप समान नहीं बन सकती, बन सकती है। और
बाबा मुरली में आया सन शोज फादर, फादर शोज सन, तो कृष्णा वाली सोल जो है उनको जन्म देने वाले जो राम वाली आत्मा है, इन दोनों में पहले कृष्णा वाली सोल प्रत्यक्ष हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई।
ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई,
कृष्णा की आत्मा तो ब्रह्मा बाबा ही दादा लिख रहा है कि कृष्णा वाली आत्मा है, ये पहले प्रत्यक्षता हुई, इसके बाद जो है
ये तो पहले से ही बेसिक वाले भी जानते हैं।
हाँ उसके बाद
कृष्ण वाली सोल जो है वो ब्रह्मा की आत्मा है,
लेकिन इतना ही जानते थे कि सतयुग में पहला पहला कृष्ण बच्चा यही बनने वाला, लेकिन उस कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप तो बाद में प्रत्यक्ष हो गए ना।
हाँ जी हाँ जी, एडवांस हो।
तो उसी प्रकार 4.5 लाख आत्माओं का भी होने वाला है,
बिल्कुल होगा।
माना पहले जो 2.25 लाख जो जन्म लेंगे, हाँ 2.25 लाख 4.5 लाख जो जन्म लेंगे वो प्रत्यक्ष होंगे, बाद में जो 4.5 लाख जन्म देंगे वो प्रत्यक्ष होंगे बाद में।
उनके प्रत्यक्ष होने न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, शरीर छोड़ जाएंगे तो प्रत्यक्ष होना न होना बराबर हो गया।
तो संख्या तो 9 लाख की बताइए ना।
9 लाख की जो संख्या होगी वो आधे बच्चे होंगे और आधे उनको जन्म देने वाले होंगे,
लेकिन वही आत्मा शरीर छोड़ेगी तब उसके अंदर प्रवेश तो होगी ना।
शरीर पहले छोड़ेगी कि पहले प्रवेश करेगी?
पहले शरीर छोड़ेगी।
तो वो टाइम आ गया कि नहीं आ गया? और
दादा शिव बाप ने उपरत व्रत चुना है जो पुरुषार्थ में आदि से लेके अंत तक डगता नहीं गिरता नहीं है, तो राम
नहीं आदि में गिर गया ना, राम फेल कैसे हो गया?
76 है बाबा,
76 में फेल हुआ, उस समय फेल नहीं हुआ,
42 में फेल हुआ,
42 में उससे पहले फेल हुआ ना, 42 से पहले फेल हुआ तब तो छोड़ के गया।
तो मुकरण व्रत के कभी कहा कि उसके अंदर जो कभी भी पुरुषार्थ में डगमग नहीं हुआ इसके लिए शिव बाप ने ये तन का सिलेक्शन किया है।
तो तब की बात है जब असली ज्ञान बुद्धि में बैठे, जब तक ज्ञान बुद्धि में बैठा ही नहीं है तब तक खड़े होने और गिरने की बात ही नहीं, तो नीम अकी में खतरे वाली बात हो गई। पहले अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए, पहला ज्ञान तो है आत्मा का, ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा हूँ, बस मैं बिंदी आत्मा हूँ, वो तो सभी को मालूम हो गया। ये कोई फाउंडेशन नहीं है ज्ञान का, असली फाउंडेशन क्या है? मैं आत्मा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाने वाली हूँ, ये है पहली सीढ़ी। इस बात का पक्का निश्चय हो जाए
बाबा गीता पाठशाल में जो है मम्मा और बाबा आगे दोनों जाएंगे मिलके, छोटी माँ और बाबा
कहाँ
गीता पाठशाला में,
छोटी माँ और बाबा
दोनों जाएंगे गीता पाठशाला में, ऐसे बोला माँ।
और बड़ी मम्मी को कहाँ उठा के रख दिया है?
बड़ी मम्मी जाएंगी,
बड़ी मम्मी जाएंगी कि छोटी मम्मी जाएंगी है?
छोटी मम्मी का है ना,
छोटी मम्मी का गायन है कि बड़ी मम्मी का गायन है कि दोनों का गायन है?
दीदी और अदिति की बात
है,
दीदी और अदिति की बात।
तो दोनों जाएंगी या एक ही जाएंगी? अच्छा चलो क्या बात बोल रहे हैं बताओ।
नारायण और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी तो छोटी माँ है ना।
हाँ जी,
दोनों जाएंगे ना एक साथ।
हाँ, चलो चलो चले जाएंगे, कोई बात नहीं।
दोनों से एक दूसरे से मिलते भी नहीं ऐसे कहा।
हाँ
जाएंगे,
तो बुद्धियोग से जाना जाना नहीं कहा जाता है।
प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे।
हैं?
प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे।
और प्रैक्टिकल जो जिनको अर्ध नारीश्वर के रूप में बाप मिलता है उनके लिए प्रैक्टिकल अनुभव में होता है या इम्प्रैक्टिकल होता है? जिसको माँ का प्यार प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है तो उनको प्रैक्टिकल कहेंगे या इम्प्रैक्टिकल कहेंगे? जो भी सूर्यवंशी हैं वो सूर्यवंशी में दूसरा वंश तो है ही नहीं, एक ही वंश है। तो उसमें जो बाप दादा की अनुभूति है, बाप शिव बाप और दादा ब्रह्मा बड़ी माँ, तो बड़ी आँ की अनुभूति प्यार की होती है या नहीं होती है? जो अष्टदेवों को अभी अनुभूति हो रही है वो प्रैक्टिकल अनुभूति हो रही है या इम्प्रैक्टिकल हो रही है?
प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल अनुभूति हो रही है तो उनका प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है या निवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है? इतना निश्चय होना चाहिए अंदर से। निश्चय पक्का है तो शूटिंग पक्की है। मन के संकल्पों से सच्ची रची जाती है। संकल्प साकार हो जाता है।
ये सागर मंथन हुआ।
हाँ जी,
भक्ति मार्ग में कहते कि 14 रतन निकले उसमें से।
हाँ?
उसमें जो है जैसे हलाल विष कहा जाता है।
हाँ जी,
असुर का जो मादक पेय है सूरा।
हाँ?
असुरों का मादक पेय है सूरा।
हाँ?
तो इस तरह से जो है हलाल विष है या सूरा है तो इनको रतन मिलता है।
कोई के लिए क्या रतन है, कोई के लिए क्या रतन है? क्या नाली का कीड़ा है उसको नाली में से निकाल के साफ सुथरे स्थान में रख दो तो उसे लगता है कि मैं खत्म हो गया, बिलबिला जाता है। तो कोई को कीचड़ में ही अच्छा लगता है, गेंडा है भैंसा है उसको कहाँ अच्छा लगता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो जो रतन निकले हैं वो सबके लिए निकले हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि हरेक रतन हरेक को प्रिय है। क्या जो विष रतन ऐसा निकला जो किसी को प्रिय नहीं, वो एक को ही प्रिय निकला? कौन कहा अच्छा चलो सबका जिसमें कल्याण हो जाए सो हमें दे दो। कोई का कल्याण ना हो जाए तो वो रतन उनको अच्छा लगा। ऐरावत हाथी निकला वो किसी को अच्छा निकला? तो ये रतन तो रतन है, अपनी अपनी पसंद के अलग अलग हैं कैटेगरीज। और
बताया कि ये जो प्रजापिता वाली आत्मा ये यज्ञ में नहीं आई थी, बाबा मूर्तियों में चर्चा नहीं करते, यज्ञ में आ गई हो तो उसकी चर्चा होने लगी।
यज्ञ में आ गई तब चर्चा होने लगी, ऐसी बात नहीं है।
बाबा बोले ना जैसे वो ब्रह्मा कुमारी के आगे प्रजापिता सब दहन किया करते, प्रजापिता सब दहन किया ब्रह्मा कुमारी।
वो तो 66 की बात है,
बाबा
प्रजापिता 66 में नहीं आया।
तो उसके पहले बाबा उसके आने के बाद बाबा उसकी बात है,
वो नहीं आया उस समय 66 में।
बाबा ने इमर्ज तो किया ना,
इमर्ज तो पहले भी करते थे।
किया
क्या है, राम वाली आत्मा इमर्ज नहीं थी क्या पहले? प्रजापिता वाली आत्मा जब 51-52 में 58 में बुद्धि चलाते थे तो बाबा की बुद्धि में वो आत्मा इमर्ज नहीं होती थी।
मेरा प्रश्न ये है बाबा कि अभी जो बाबा बताते हैं कि जो अवैध कुआरिया चल रही
है
अष्टदेवों के लिए 3 साल से अवैध कुआरिया चल रही
है। हाँ जी, हाँ जी।
तो क्या वो 3 साल पहले आए या 3 साल के अंतराल में आए?
वो तो बोला 10 साल के 10 साल पहले से ही आ चुके हैं, अब 3 साल की बात क्यों कर रहे हैं?
वो
उन अष्टदेवों का जो विशेष पार्ट है साथ रहने का, वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक का है। क्या सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री अष्टदेवों की नहीं है? तीन साल क्या? हाँ, जब प्रत्यक्ष होना होगा तभी तो चलेगी। जब जिसको प्रत्यक्ष होना होगा, कोई कहे कि 76 में ही प्रत्यक्षता वर्ष आते तो बाप दादा ने क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रह्मा है, वो फर्स्ट ब्रह्मा, उसका मृत्यु लोक 100 साल से पहले पूरा ही नहीं होता तो बोलेंगे क्यों? तो जिस टाइम पर जो बात आती है उसका रहस्य रुदा हुआ है वाणी में, और वो रहस्य भी बाप बताने वाला है। माँ की आत्मा तो गीता माता है, गीत गाने में वाली, जैसे गीत गाने वाले गाते हैं, बहुत से गीत गाने वाले ऐसे हैं उनका अर्थ गहरा मालूम ही नहीं है उनको, कहाँ अर्थ लग रहा है अब पता चल रहा है। वो गीत जिस समय गाए गए थे गाने वालों को पता नहीं, और असली बात यहां लागू हो रही। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल वहां बोलती है, लेकिन उसका असली अर्थ जो बाप के बच्चे हैं उनको पहले पता पड़ता है। और
बाबा ये मनन चिंतन करने पर रतन भी निकलते और विष भी निकलता है।
जब तक सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक रतन नहीं मिलेंगे।
रतन ले रहे हो तो
हैं?
जो मनन चिंतन करेंगे ना हम,
हाँ,
उसमें विष भी निकलेगा और रतन भी निकलेगा।
वो तो विष पीने वाला तैयार बैठा है, तुम तो गाय के लिए चिंता कर रहे हो? है
भाई, बोल रहा हूँ इसको पिलाए,
इसको पिलाए। जो पीने वाला उसी को पिलाओ। घबराहट होती है क्या? घबराहट नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, और
बाबा अपने सभी धर्मों के बीच समय हुए
हैं?
आपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए?
मेरे में गाय के लिए समाये, तेरे में समाये, तेरे मम्मा पापा में समाये, मेरे में गाय के लिए समाये हो सब। मैं देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनूंगा है? हाँ जी,
बाबा फोटो में से कोई में से भी कोई
है,
फोटो में से कोई में से कोई तो 108 पहचानते बाप को,
हाँ,
तो शिव बाबा उनमें 108 में प्रवेश करते
हैं। शिव बाप प्रवेश करते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं?
शिव बाबा इस तरह में प्रवेश करते।
अच्छा, हाँ ठीक है। और
तो शिव बाबा 108 में प्रवेश करते हैं,
ठीक है।
उसी तरह से जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बोला
है,
तो जो ब्रह्मा है वो भी 1000 आत्माओं में प्रवेश करेगा क्या?
उसकी आत्माएं 1000 सहयोगी बनती हैं। क्या 1000 भुजाओं में प्रवेश करने वाली बात नहीं बताई, ये बोला कि बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चे बोलने वाला कौन है? बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए जो विशेष नजर में बच्चे हैं राजा बनने वाले, उनमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अभी भी बजाती है।
ऐसी कितनी आत्माएं होगी?
108
में,
हाँ, जिनमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनकी सर्विस को बढ़ाए देते हैं, जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं, हिम्मत बच्चे मददे बाप, जो साबित होने वाले बच्चे हैं, उनको सहयोग मिलता है।